ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रशेखर शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में विश्वसनीय भागीदार बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर डिजिटल युग का आधार है और वह दिन दूर नहीं जब सेमीकंडक्टर उद्योग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी आधार होगा। श्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया से एक दिन पहले आज नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव राउंड टेबल की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के अग्रणी कारोबारियों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार एक स्थायी नीति व्यवस्था का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के फोकस के साथ हर कदम पर उद्योग को सहयोग देना जारी रखेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता की सराहना की। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ करेंगे। तीन दिन के इस कार्यक्रम का विषय है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री ने व्यापार, निवेश और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। डॉ जयशंकर ने आज बर्लिन में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालिना बेयरबॉक से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अक्षय ऊर्जा सहित नई और उभरती प्रौद्योगिकियां भारत जर्मनी सहयोग के लिए नए अवसर पैदा कर सकती हैं। विदेश मंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते और अन्य समझौतों पर तेजी से आगे बढ़ने की आशा व्यक्त की। इससे पहले बर्लिन में एक सम्मेलन में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच अधिक रक्षा सहयोग का आह्वान किया और जर्मनी से निर्यात नियंत्रण में ढील देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विशेषकर भारत का निजी क्षेत्र अब रक्षा क्षेत्र में विस्तार कर रहा है, तब रक्षा सहयोग पर अधिक विचार किया जाना चाहिए। भारत और संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान की मुंबई यात्रा के अवसर पर व्यापार संबंधी दो प्रणावों पर सहमत हुए हैं। इनमें भारत संयुक्त अरब अमीरात वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर वीटीसी और मैत्री इंटरफेस पर काम करना शामिल है। यह भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत है। दूसरा परिणाम महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक सहयोग के लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज होल्डिंग लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी इंडिया लिमिटेड के संघ के बीच एक समझौता ज्ञापन से संबंधित है। गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना है कि साइबर अपराध से निपटने के लिए अगले 5 वर्षों में 5,000 साइबर कमांडो प्रशिक्षित किए जाएं। नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी से वृद्धि हो रही है और 2030 तक इसकी वार्षिक बिक्री 1 करोड़ हो जाएगी। इससे 5 करोड़ नौकरियों का सृजन होगा। नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में श्री गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि 400 स्टार्टअप ने दोपहिया वाहनों का विनिर्माण शुरू किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज 21 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाजपा ने 90 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए अब तक कुल 88 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस ने 40, आम आदमी पार्टी ने 20 और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में जननायक जनता पार्टी ने 31 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इस बीच हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा नामांकन दाखिल करने के साथ ही प्रचार तेज हो गया है। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, डॉ कमल गुप्ता और सुभाष सुधा ने नामांकन दाखिल किया। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इसमें 6 पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। एसबी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक डीके बुरा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान घुसपैठ और गड़बड़ी रोकने के लिए सीमा पर व्यापक उपाय किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।